अगले कवि का नाम है केदारनाथ सिंह। प्रश्न, केदारनाथ सिंह का जीवन परिचय अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए, या केदारनाथ सिंह के काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या केदारनाथ सिंह की भाषा शैली का वर्णन कीजिए। उत्तर, आधुनिक हिंदी काव्य साहित्य एवं नई कविता के मूर्धन्य कवियों में श्री केदारनाथ सिंह का नाम आदर से लिया जाता है। श्री केदारनाथ सिंह की काव्य कला अन्य आधुनिक कवियों की अपेक्षा अधिक पारदर्शी है। उनकी कविताओं में व्यवस्था के लिए विशेष संघर्ष देखने को प्राप्त होता है, जैसा कि वे स्वयं लिखते हैं, मुट्ठी में प्रश्न लिए दौड़ रहा हूँ वन वन, पर्वत पर्वत, रेती रेती, बेकार। मानव जीवन को संवारने हेतु श्री केदारनाथ सिंह जी ने ग्रामीण स्तर से लेकर नगरीय एवं औद्योगिक स्थलों तक के वर्णन का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। श्री केदारनाथ सिंह की काव्यकला का भाव पक्ष मूलतः ग्रामीण जीवन के क्रियाकलापों से ओतप्रोत है। नई कविता के उन नायकों में श्री सिंह का अपना विशेष स्थान है। उनकी कविता जीवन के लिए है। वे ब्रह्मवाद से दूर होकर यथार्थवाद को कर्मवाद में निरूपित कर न केवल काव्य के लिए वरन काव्य जीवन के लिए उनका महत्वपूर्ण देन है। ग्राम्य जीवन का एक सुंदर चित्रण देखने योग्य है। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। उपयुक्त धानों का गीत श्री केदारनाथ सिंह जी ग्रामीण मनोभावों को नवीनतम काव्य धारा में विशेष रूप से विश्लेषित करते हैं। केदारनाथ सिंह का प्रयोगवाद व प्रगतिवाद मूल आधार है। प्रत्येक मानवीय समाज को अधिकतम आनंद की अनुभूति कराना है, किंतु उनका आनंद भाव सही न होकर आत्मा को झंकृत करती है। वर्तमान आधुनिक समाज झंझावत एवं द्वंद्ववाद से आक्रांत है। सर्वत्र समस्याओं का साम्राज्य व्याप्त है। हर कोई इन बोझिल समस्याओं से मुक्ति का मार्ग ढूंढता है, साथ ही कभी कभी पलायन करने का प्रयत्न भी करता है, किंतु सबसे बड़ी समस्या है अनागत का। वे इस अनागत के प्रश्न पर बड़े ही व्यग्र दिखाई पड़ते हैं, जैसा कि वे स्वयं प्रस्तुत करते हैं, इस अनागत को करें क्या, जो कि अक्सर बिना सोचे बिना जाने सड़क पर चलते अचानक दिख जाता है। श्री सिंह वर्तमान काव्य जगत के मनोवैज्ञानिक काव्यकार हैं। वे जीवन के झंझावतों को बड़े ही गंभीरता से देखते हैं, परखते हैं, तत्पश्चात भीषण भयंकर भावनाओं को आत्मसात कर उसका सदिश सम्यक एवं सुचारू रूप से संवर्धन करने का प्रयत्न करते हैं। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में यथार्थवादी मनोवैश्लेषिक चित्रण निसंदेह रूप से प्रखरता को प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने दुपहरिया का अत्यंत यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत किया है, जो देखने योग्य है। झरने लगे नीम के पत्ते, बढ़ने लगी उदासी मन की, उड़ने लगी बूझे खेतों से झुरझुर सरसों की रंगीनी, धूसर धूप हुई मन पर ज्यों सुधियों की चादर अनबीनी, दिन के इस सुनसान पहर में रुक सी गई प्रगति जीवन की। श्री केदारनाथ सिंह जीवन के प्रति संवेदनशील काव्यकार हैं। उनमें गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों का ही प्रभाव दिखलाई पड़ता है। एक ओर वे जीवन के अस्तित्व की रक्षा हेतु संघर्ष करते दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी ओर वे सृजनात्मक विकास में विश्वास करते प्रतीत होते हैं। कवि का विचार है कि जीवन में कुछ पाने के लिए लड़ना पड़ता है। संघर्ष करना पड़ता है, आग में तड़पना पड़ता है। परिपक्वता प्राप्त करने हेतु उसे अनेक कठिनाइयां झेलनी पड़ती है, जैसा कि श्री सिंह अपने एक कविता रोटी के माध्यम से कहते हैं, मैं सिर्फ आपको आमंत्रित करूंगा कि आप आएं और मेरे साथ सीधे उस आग तक चलें, उस चूल्हे तक जहां वह पक रही है, एक अद्भुत ताप और गरिमा के समूची आग को गंध में बदलती हुई दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक चीज वह पक रही है। फलतः श्री केदारनाथ सिंह के काव्य का भाव पक्ष ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से प्रारंभ होकर मानव मात्र के जीवन को सतत त्याग, बलिदान, संघर्ष और विकास का संदेश प्रदान करता है। श्री केदारनाथ सिंह के काव्य कला का अध्ययन मूलतः उनकी प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करती है। श्री सिंह की भाषा हिंदी देवनागरी खड़ी बोली है। मूलतः उनकी भाषा सरल, बोधगम्य एवं आम जीवन से चयनित होता है, साथ कहीं कहीं पर संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों की भी प्राप्ति होती है। उनकी भाषा में रहस्य, रोमांच, लक्षण एवं व्यंजना के स्वर सुनाई पड़ते हैं, जैसे आजकल ठहरा नहीं जाता कहीं भी, हर घड़ी हर वक्त खटका लगा रहता है, कौन जाने कब कहाँ वह दिख जाए, हर नवांगुतुक उसी की तरह लगता है। फलतः भाषा में विविधता होते हुए भी भाव व्यतिरेक अत्यंत ही सीधा है, जिसे सामान्य से सामान्य पाठक भी समझ सकता है। श्री सिंह ने ग्रामीण अंचल के सामान्य भाषा का प्रयोग भी खुलकर किया है, जैसे छोटे से आंगन में माँ ने लगाए हैं तुलसी के बिरवे दो, पिता ने उगाया है बरगद छतनार, मैं अपना नन्हा गुलाब कहाँ रोप दूं। यहाँ बिरवे, छतनार आदि शब्द मूलतः ग्रामीण अंचलों में प्रयोग किया जाता है। श्री केदारनाथ सिंह उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी के साथ आंचलिक भाषाओं का विशेष रूप से प्रयोग किया है, फलतः उनकी भाषा में अनेकता है। जहाँ तक शैली का प्रश्न है, श्री सिंह की शैली भी अन्य आधुनिक कवियों की भांति विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक तथा रहस्यात्मक है। फूल जैसे अंधेरे में दूर से ही चीखता हो, विचित्र रहस्य है, विचित्र भाव है, विचित्र शैली है। मैंने जब भी उसे तोड़ा है, मुझे हर बार पहले से ज़्यादा स्वादिष्ट लगी है। श्री सिंह की कविता में मूलतः करुणा, शांत, अद्भुत आदि रसों का खुलकर प्रयोग हुआ है। अलंकार की दृष्टि से अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान आदि का विशेष प्रयोग किया गया है। श्री सिंह की काव्य रचना मूलतः मुक्तक छंद में ही हुआ है। इस प्रकार श्री केदारनाथ सिंह जी का नाम आधुनिक काव्य रचनाओं में अग्रणी है। उन्होंने ग्रामीण जीवन के सामान्य क्रियाकलापों को छंदबंधित कर काव्य जगत को एक नवीनतम धारा प्रदान की। उनमें प्रयोग करने की लालसा है, प्रगति की आकांक्षा है, उनकी कला में लालित्य है। परिणाम स्वरूप श्री केदारनाथ सिंह को नवीन काव्य का जगत का मूर्धन्य काव्यकार के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। वे नई कविता के महान सर्जक हैं। केदारनाथ की पहली कविता का शीर्षक है दुपहरिया। झरने लगे नीम के पत्ते, बढ़ने लगी उदासी मन की, उड़ने लगी बूझे खेतों से, झुरझुर सरसों की रंगीनी, धूसर धूप हुई मन पर जो सुधियों की चादर अनबीनी, दिन के इस सुनसान पहर में रुक सी गई प्रगति जीवन की, सांस रोक कर खड़े हो गए लुटे लुटे से शीशम उन्मत्त, चिलबिल की नंगी बाहों में भरने लगा एक खोयापन, बड़ी हो गई कटुकानों को चूर चूर ध्वनि बाँसों की बन की, थक कर ठहर गई दुपहरिया रुक कर सहम गई चौबाई, आँखों के इस बिराने में और चमकाने लगी रुखाई, प्राण आ गए दर्दीले दिन बीत गई रातें ठिठुरन की। व्याख्या एवं विशेषताएं। प्रस्तुत काव्य शीर्षक दुपहरिया नई कविता के मूर्धन्य रचनाकार श्री केदारनाथ सिंह जी द्वारा प्रस्तुत की गई है। श्री केदारनाथ सिंह ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के मनोवैश्लेषिक सृजनकार हैं। वे सर्वप्रथम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सृष्टि का सघन अध्ययन करते हैं, तत्पश्चात मनन करने के बाद सघन मनन के पश्चात अपने काव्य कला के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं। प्रस्तुत काव्य दुपहरिया के अंतर्गत श्री सिंह ने ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का अत्यंत ही सजीव चित्रण किया है, जो रेखाचित्र के समान पटल पर अवतीर्ण होती है। श्री केदारनाथ सिंह अपने मनोभावना को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में दोपहर के समय जब सूर्य अपनी पूर्ण प्रखरता पर होता है तो धरातल का स्वरूप ही कुछ दूसरा होता है। यहाँ कवि चैत्र मास के दोपहर का सुंदर चित्रण किया है कि दोपहर के समय ग्रामीण अंचल में मन की उदासी बढ़ने लगती है, व्यग्रता सीमा को तोड़ने लगती है, सर्वत्र निराशा एवं उदासी का वातायन आच्छादित हो जाता है, नीम के पत्ते एक एक कर झरने लगते हैं, सर्वत्र वीरान नजर आने लगता है, गर्मी के बढ़ने के साथ साथ खेतों से हरियाली मिटने लगती है, जहाँ कल तक सरसों के पुष्प मनन को मोहते थे आज वहीं पूर्णतः वीरानी छाई हुई है, सर्वत्र उदासी है, वीरानापन है, न कोई आनंद, न कोई स्पंदन, न कोई हरियाली, न कोई नंदन, खेत धूसर धूल से भरे हुए हैं, मात्र एक सुधी याद आ रही है, यह दोपहर वस्तुतः एवं ठहराव है, चारों ओर सूनापन छाया हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जीवन की प्रगति पूर्णतः अवरुद्ध हो गई है। श्री केदारनाथ सिंह आगे कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में दोपहर के समय जब सूर्य अपने चरम तेज पर होता है तो सर्वत्र वीरानापन दिखलाई पड़ता है, शीशम के वृक्ष नीचे सभी पत्ते झर चुके हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक योगी की भांति सांस रोककर प्राणायाम में लीन हो चुका है, चिलबिल का वृक्ष जो पूर्णतः पत्तियों से विहीन हो चुका है धीरे धीरे उसमें नव रंगीनियां आच्छादित हो रही हैं, चूंकि दोपहर के प्रभाव से खेत वीरान हो गए, वृक्षों से पत्ते झर चुके हैं, तेज बयार बहने से बांसों के टकराहट से विचित्र ध्वनि बिखर रही है जो कर्णों को कष्ट प्रतीत होती है। कविवर श्री केदारनाथ सिंह ग्रामीण अंचल में दोपहर के समय जबकि सूर्य अपने प्रचंड तेज से आलोकित हो रहा हो ऐसा प्रतीत होता है कि कभी समाप्त ही नहीं होगा, मानो यह दोपहर पूर्णतः थक चुकी है और अब दोपहर समाप्त नहीं होगी, ऐसा प्रतीत होता है कि वह थक कर ठहर गई है और जो चौबाई हवा बह रही थी वह भी भयभीत होकर थम गई है, ऐसी अवस्था में वीरान खेत और भी अधिक आँखों को धसने लगे हैं, सर्वत्र कष्ट दुख पीड़ा वेदना दर्द टीस का वातावरण आच्छादित हो गया है, अब दर्द भरी रातें समाप्त हो चुकी हैं, मात्र दुख से भरे दिनों का आगमन हो रहा है। विशेषताएं। प्रस्तुत कविता दुपहरिया कविवर श्री केदारनाथ सिंह जो नई कविता के ग्रामीण अंचल के मर्मज्ञ कवि माने जाते हैं, द्वारा प्रस्तुत है, जिसके अंतर्गत श्री सिंह ने चैत्र व बैसाख के दोपहर को जो सर्द ऋतु के पश्चात आती है उसे दर्दीले दिन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। श्री सिंह के अनुसार यह दोपहर दुखदायी है, क्योंकि नीम के पत्ते झड़ने लगते हैं, खेत वीरान हो जाते हैं, चौबाई बहना बंद हो जाता है, खेत में धूल ही धूल उड़ते हैं, वृक्ष पत्ते विहीन हो जाते हैं, सर्वत्र एक भयानक आवाज प्रस्फुटित होती है। अतः वे प्राण को संबोधित करते हुए कहते हैं, आ गए दर्दीले दिन। कविता का कला पक्ष प्रभावशाली है, काव्य ज्ञेय है। कविता में मधुरता एवं लयात्मकता दोनों ही व्याप्त है। कविता की भाषा सरल सुबोध और काव्यमय है। कविता की शैली वर्णनात्मक विवेचनात्मक तथा भावात्मक है। कविता में सामासिक चिन्ह का प्रयोग खुलकर किया गया है, साथ ही अनुप्रास एवं उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। कविता का रस शांत एवं करुण है, छंद मुक्तक होते हुए भी गेय हैं। कविता गुण के आधार पर व्यंजना एवं अभिव्यंजना का भाव संवर्धित करती है। केदारनाथ की अगली कविता का शीर्षक है धानों का गीत। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर, चंदा को बांधेंगे कच्ची कलियों में, सूरज को रूखी सूखी रेत में, आना जी बादल जरूर। आगे पुकारेंगी सुनी डगरिया, पीछे झुके बन बेत, संझा पुकारेगी गीली अंखड़िया, भूर हुए धन खेत, आना जी बादल जरूर। धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, कपेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। धूप ढरे तुलसी बन झरेंगे, सांझ घिरे पर कनेर, पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, धान दिए के बेर, आना जी बादल जरूर। धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। झीलों के पानी खजूर हिलेंगे, खेतों के पानी बबूल, पछुआ के हाथों में सांखे हिलेंगी, पुरवा के हाथों में फूल, आना जी बादल जरूर। धन तुलेंगे कि प्राण तुलेंगे, तुलेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। व्याख्या एवं उसकी विशेषताएं। प्रस्तुत कविता धानों के गीत कविवर श्री केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है, जिसके अंतर्गत कवि ने ग्रामीण परिप्रेक्ष्य का सुंदर सजीव चित्रण किया है। धान और पानी का विशेष घनिष्ठ संबंध होता है। कवि ने विभिन्न उपादानों एवं उपमानों को प्रस्तुत कर बार बार आना जी बादल जरूर को अद्भुत किया है। वस्तुतः यह कविता एक गीत है, जिसमें कवि अपने विभिन्न भावों को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। कवि श्री केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि धान वस्तुतः मनुष्य का प्राण है। धान के उगना तात्पर्य है कि वास्तविक रूप से प्राण वायु को शक्ति प्राप्त होती है, जिससे मनुष्य की शक्ति प्राप्त होगी। यह प्राण शक्ति प्रदान करने वाले धान हमारे खेत में उगेंगे। अतः वह बादल से प्रार्थना करता है कि हे बादल, धान खेत में तभी उगेंगे जब तुम होगे, अतः तुम पानी लेकर अवश्य आना। चाहे रात्रि का बेला हो या तपती सूर्य के प्रभाव में से रेत हो, दोनों ही सिंचित करने हेतु, हरा भरा बनाने हेतु, कच्ची कलगियों को चंदा के समान विकसित करने हेतु, हे बादल तुम अवश्य आना। हे बादल, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। चाहे सुनसान मार्ग हो या बेत के वन हो, या संध्या के समय अखड़िया के सिंचित करने का प्रश्न हो, या प्रातःकाल धान के खेतों को भरने का आवश्यकता हो है, हे बादल प्रत्येक दशा में तुम्हारी आवश्यकता है, अतः तुम अवश्य आना। हे मेघराज, तुम में वह शक्ति है कि तुम्हारे आने से धान का विकास होगा, हमारे खेत लहलाएंगे, हमारे मन में स्पंदन और आनंद होगा, अतः तुम अवश्य आना। जैसे जैसे धूप बढ़ेगी तुलसी के कोमल पत्ते अपने आप सूखकर झरने लगेंगे। संध्या के समय कनेर के पुष्प बिखरने लगेंगे। पूजा आते आते अर्थात क्वार मास में ज्वार पककर झरने लगेंगे और धान भी अपना बेर ग्रहण कर लेगा। अतः हे बादल अवश्य आना, क्योंकि तुम्हारे बिना यह संभव नहीं है। कवि का विचार है कि धान पकेंगे तो मानो प्राण शक्ति प्राप्त होंगे। यह हमारे ही खेत में पकेंगे, अतः उन्हें विशेष शक्ति प्रदान करने हेतु हे मेघ अवश्य आना। हे बादल, तुम्हारे आने से ही झीलों में हलचल होती है और उसमें पानी की लहर उठती है। खजूर के वृक्ष फूलते फलते हैं, खेतों में पानी भर जाते हैं, पक्षियां हवा बहने से वृक्षों और पौधों की शाखें और टहनियां नूतन नृत्य करती हैं। पूर्वा हवा बहने से फूल कुसुमित होगी, अतः हे बादल तुम अवश्य आना। अंततः हे मेघ, तुम्हारी ही कृपा से धान पकेंगे और लूटेंगे, उससे प्राण शक्ति में भी नवसंचार होगा। यह हमारे ही खेत में होगा, अतः हे बादल तुम अवश्य आना। जैसा कि सर्वविदित है कि कविवर श्री केदारनाथ सिंह ग्राम्यांचल परिधि के विषय वस्तु पर प्रगतिवादी विचारधारा से ओतप्रोत होकर धानों के गीत प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत कविता में अनेक बिंबों का प्रयोग किया गया है। धान, प्राण और बादल तीनों का स्थूल रूप से एवं सूक्ष्म रूप दोनों का अलग अलग महत्व है। स्थूल रूप से धान, प्राण और बादल का एक प्राकृतिक संबंध है, किंतु सूक्ष्म रूप से इनका गहरा अर्थ है। खेत मनुष्य का शरीर है, धान उनका ज्ञान है, प्राण उसकी शक्ति है और बादल उनका सब उन सब का पोषक है। अतः मानव रूप खेत में धान रूपी ज्ञान, प्राण रूपी शक्ति तीनों का विकास बादल रूपी दैवी शक्ति से संवर्धित होते हैं। कविता का भाव पक्ष निसंदेह गंभीर है, किंतु कविता ने इसे गीत रूप प्रदान कर सामान्य जन के लिए भी बोधगम्य बना दिया है। कवि का विचार है कि बादल एक शक्ति है जो हमारे खेत खलिहान, वन बाग, तड़ाग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हमारे अनाजों को उगने एवं फलने फूलने में सार्थक सदिश सम्यक रूप से सहायक सिद्ध होते हैं। कविता का कला पक्ष निसंदेह रूप से प्रभावशाली है। कविता गीत रूप में है, अतः भाषा अत्यंत ही सरल, सुबोध एवं प्रभावशाली है। हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं उर्दू के शब्द भी उपयोग में लाए गए जैसे जरूर आदि। आंचलिक भाषा का भी प्रयोग किया गया जैसे अखड़िया, डगरिया। कविता की शैली वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक है। कविता का श्रृंगार के साथ साथ करुण का भाव उत्पन्न करती है। अलंकार में अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि का प्रयोग हुआ है। छंद मुक्तक एवं गेय है। काव्य गुण के आधार पर कविता में माधुर्य गुण का सर्वाधिक प्रभावशाली रूप से प्रयोग किया गया है। यहाँ केदारनाथ की कविताओं की व्याख्या समाप्त हो गई।